आज हम मुसलमान दुनिया को कुरान के अजायब, कुरान के वंडर्स दिखाने में कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है। और आज हम मुसलमान औरतें बेहतरीन से बेहतरीन, हम अपनी बात करें जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा क्राउड अब व्हाट्सएप पर भी सुनता है। कुछ लोग बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं हमें तो कोई दुआओं में याद ही नहीं रखता, हमारा तो कोई जिक्र ही नहीं करता। नहीं, हम सबका जिक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम प्लूरल के कॉन्जुगेशन में बात करते हैं। मैं नेमतों वाली खवातीन से बात कर रही हूँ। हम इस बात को तो भूल गए कि हमने दुनिया को इस कुरान के वंडर्स दिखाने थे, लेकिन क्या हम ये बात भी भूल गए कि ईद के ऊपर अच्छा सा ड्रेस कैसे पहनना था? या ये बात याद है? आए, आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, रोजा लग रहा है, अल्लाह की रहमत से इतना अच्छा मौसम है। ये बात हम नहीं भूले, ये बात हमें याद है। अल्लाह ने मना नहीं किया ईद के अच्छे कपड़े पहनने से, लेकिन इस जिम्मेदारी को निगलेक्ट ना कीजिएगा। जैसे जो दरवाजा इस वक्त इल्म का आपके दिल और दिमाग और जिंदगी में कुरान का खुला है, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि यह दरवाजा हमेशा खुला रहे, ताकि आपको अपनी नेमतों को अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ इस्तेमाल करना आए। अपनी अपनी मसरूफियत को हम देख लें कि हमारी जो जिम्मेदारी अल्लाह ने एज अ उम्मत दी थी, मुसलमान कहाँ खोए हुए हैं? और जब आप मुसलमानों के खोए होने की बात करें, तो सबसे पहले अपने आप को देखें, मेरी मसरूफियात क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, मेरा ज्यादा दिन का 24 घंटे का जो मेन चंक है वो कहाँ गुजरता है, मैं कितना इस उम्मत को अपलिफ्ट करने में फायदा दे सकती हूँ। क्या हम एक कंस्ट्रक्टिव इंसान मुसलमान के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, या हम गार्बेज हैं इस जमीन के ऊपर? हबा अम मंसूरा, अल्लाह ताला ने कहा है बास लोग जो अपने अपनी तरफ से बड़ी नेकियां लेकर आएंगे, कयामत के दिन जब उनके अमाल अल्लाह के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, हबा अम मंसूरा, उनको राख बनाकर उड़ा दिया जाएगा। नो वेट, इसलिए कि सेल्फ क्रिएटेड नेकियां थी जिन्होंने अपनी तरफ से समझा कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, और जो नेकी का मैनुअल अल्लाह ने दिया था और हमेशा से नस्ल दर नस्ल घर में मौजूद था, शायद खत्म पर खत्म भी हम उसके करते थे, हर रमजान में 2, 4, 6 दफा तो पढ़ ही लेते थे, हर एक के इंतकाल पर 15, 20 दफा तो खत्म हो ही जाता था, जो उसमें मैनुअल दिया था नेकी करने का, जो उसमें स्टैंडर्ड दिया था नेकी करने का, उस पर तवज्जो करने के लिए कभी इंसान ने सोचा ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं निकला, गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ने मुझे ये दी क्यों इतनी बड़ी किताब। अगर किसी को सिर्फ इसाले सवाब के लिए ही कुरान देना था तो एक पारा काफी था ना, क्यों दिया 30 पारे? पढ़ने आसान होते हैं। अभी देख, हम में से मेजोरिटी लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब, मुझे उम्मीद है कि हम एक कुरान तो कम से कम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं तिलावत के साथ। आसान टारगेट है या मुश्किल है? नॉट ईजी, आदत नहीं है ना पढ़ने की, अटक अटक के पढ़ते हैं, रुक रुक के पढ़ते हैं, फिर जॉ ही थक जाते हैं। जो लोग तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, आई एम श्योर, मतलब मैं नहीं पढ़ सकती, मैं 3 सफ़ों से ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरा मुंह थक जाता है, सो आई नीड अ ब्रेक। फिर मैं 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की ब्रेक के बाद फिर कुरान पकड़ के बैठ जाती हूँ। सो हम सबके लिए मुश्किल हो रहा है, इसकी आदत ऐसी हो कि यह हमारी फिंगर टिप्स पर हो। अगर मैं आपसे कहूँ सूरतुल असर सुनाइए, आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरतुल असर सुना देंगे। अगर मैं आपको आधी बेहोशी में भी उठाऊं, आप सोई भी हो, और मैं आपको हल्का सा उठा के कहूं प्लीज जरा सूरह फातिहा सुना दीजिए, सुना देंगे आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? अगर हम कुरान को इसी तरह से अपना उठना बैठना बना लेंगे, तो हम इससे फेमिलियर होते जाएंगे। ये मैंने इतनी कहानी इसलिए सुनाई है कि हम मुसलमानों को वाकई इस किताब को थामने की जरूरत है, और पढ़े लिखे तबके को खास तौर पर थामने की जरूरत है। वो जो एकेडेमिया है, वो जिनके पास यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज हैं, वो जिनका जहन बहुत तेज चलता है, वो जिनका इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट बहुत फास्ट है, वो जिनको करंट अफेयर्स का भी अंदाजा है, इस किताब को थामिए। एक जमाने तक यही समझा जाता रहा कि जो पर्ल्स होते हैं वो सॉल्ट वाटर में होते हैं, समुन्द्रों में होते हैं, लेकिन अब आप इस कुरान की आयत को पढ़ें और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो क्या कुरान की आयत गलत कह रही है? अगर अल्लाह ने कहा है मिन होमा या खुरुजू मिन होमा, इन दोनों में से निकलते हैं लु लु वल मरजान, कॉरल्स और पर्ल्स, इसका मतलब है अल्लाह ने वो चीज बता दी है जो साइंस या जो इंसान ने 1450 साल पहले तो नहीं समझी थी। 21वीं सदी का, 21st सेंचुरी का इंसान इस बात को समझ गया। आज जहां दुनिया खड़ी है, मुसलमान तो गाफिल ही रह जाते हैं, मेजोरिटी, आज जहां दुनिया खड़ी है, इस वक्त एक बड़ी इंडस्ट्री है, फ्रेश वाटर पर्ल ग्रोइंग फार्म्स। कितने लोग जानते हैं फ्रेश वाटर ग्रोइंग फार्म्स जो हैं वो बन रहे हैं? होनूरा पर्ल सुना है? HONORA, होनूरा पर्ल। दिस इज द लार्जेस्ट कल्चर्ड फ्रेश वाटर फार्म इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री। ऑब्वियसली इसको खरीदने वाला सबसे बड़ा इस वक्त बायर अमेरिका है। और ये कहाँ ग्रो हो रहा है, ये फार्म्स कहाँ पर हैं? चाइना। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री फ्रेश वाटर्स, बड़े बड़े उन्होंने फ्रेश वाटर पॉन्ड्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज बनाई हैं। 20 ईयर्स पहले, अराउंड अर्ली 70s में इन्होंने शुरू किया था ये काम। अर्ली 70s में इन्होंने ये कोशिश करना शुरू की कि हम किसी तरह से फ्रेश वाटर में पर्ल्स को ग्रो करें, आर्टिफिशियली कल्चर्ड पर्ल्स को ग्रो करें। और ग्रो कैसे करते हैं, इट्स अ होल साइंस। मैं फिर वो साइंस बोलूंगी, बाज बच्चे कहते हैं हम तो सो जाते हैं जब आप साइंस बताते हैं। तो एक्चुअल पर्ल जो अल्लाह ताला बनाते हैं, जिसको आप मदर नेक्टर कहते हैं, उसी में से नेकर लेते हैं, ये ड्राफ्टिंग करते हैं उसी में से कुछ सेल्स लेकर, और बाकी इस आर्टिफिशियल के अंदर जो है उसको ड्राफ्ट करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है इसकी प्रॉपर ग्राफ्टिंग करके लाखों की तादाद में एक वक्त में फार्म्स के अंदर ये ग्रो हो रहे हैं। और इतनी स्पीड है अब ग्रो करने की, लेट 70s में शुरू हुआ था या मिड 70s में शुरू हुआ था, और कोशिश करते करते बाय द एंड ऑफ लेट 90s सक्सेसफुली इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कल्चर्ड आर्टिफिशियल पर्ल मार्केट चाइना की है। चाइना पूरी दुनिया को दे रहा है, और ये समुन्द्र से नहीं निकल रहा, समुन्द्र से जो निकलता है वो तो नेचुरल निकलता है। ऑब्वियसली ये इन्होंने 20 साल में बहुत मेहनत की है। पहले इनके पर्ल का साइज बहुत छोटा होता था, बट अब अपनी टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस होते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनका पर्ल ब्राइट भी होता जा रहा है और साइज में बड़ा भी होता जा रहा है, एंड मोर मेटेलिक इन नेचर, जैसा कि नेचुरली जो सॉल्ट वाटर का होता है वो निकलता है। आप अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने वो बातें इस कलाम में बताई हुई हैं जो आज के मुसलमान की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। सहाबा ने तो एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो तो बिल्कुल अर्ली मुखातिबीन थे। 1450 साल के बाद आने वाले मुसलमान आज दुनिया को जिस तरह से तरक्की में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हमारा ईमान तो बहुत शूट करना चाहिए, हमारा ईमान तो हर डिस्कवरी पर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, हम हर डिस्कवरी के ऊपर साइंस की तारीफ जरूर करते हैं, साइंटिस्ट की तारीफ जरूर करते हैं, रिसर्च पेपर की तारीफ जरूर करते हैं, जिस मुल्क ने उस रिसर्च को आगे बढ़ाया होता है उसकी तारीफ जरूर करते हैं। इस सारे सिनेरियो में किसको भूल जाते हैं? उसको भूल जाते हैं जिसने ये सारी अकल इंसान को दी, उसको भूल जाते हैं जिसने ये सारी अकल का खजाना आपके हाथ में दिया है। दुनिया को आगे बढ़ाने का जेनेटिक कोड आपके और मेरे हाथ में है, मगर दुनिया हार्नेस कर रही है, इसलिए कि मुसलमान गाफिल है, मुसलमान को होश नहीं है। मुसलमान अपने बच्चों को पहले रोबोट्स तो बना दें, बेटा अगर तुम्हारे ओ लेवल्स में ए स्टार ना आए देखना तुम, बस यहीं तक, नैरो माइंडेड, इससे आगे नहीं बढ़ता दिमाग हमारा। और उसके बाद हम समझते हैं कि जब एक दफा बच्चे ने रिजल्ट में वो स्ट्रेट ए स्टार्स ले लिए, हमें लगता है बस जैसे तो जन्नतुल फिरदौस का टिकट मिल गया, तसल्ली, सुकून, रिलैक्स, अब तुम जो मर्जी करो मेरे बच्चे। अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है, यकीनन उसने दुनियावी लिहाज से एक बड़ा अचीवमेंट किया है, लेकिन अब उसके बाद उसको अल्लाह का बंदा बनाने की भी तो कोशिश करें। मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में राइज हैं, मेजॉरिटी, वो हमारे बच्चों को इंसान नहीं बना रहे, विदाउट अ डाउट। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ ऑटोग्राफ के साथ, बिकॉज ये एक्सपीरियंस हम में से हर माँ कर रही है। हमारे बच्चे हमारे स्कूल सिस्टम्स में इंसान नहीं बन रहे, मशीन्स बन रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन। बेटियों को उस डगर पर डाल दिया, बस आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ना मुझे अब्बा का साया चाहिए सर पे, ना मुझे भाई की मदद चाहिए, ना मुझे हस्बैंड चाहिए। वो क्या होता है हस्बैंड? वो क्या, मुझे नहीं चाहिए हस्बैंड, कोई भी कहेगा यहां ना जाओ, ये ना करो, ये ना करो, इधर आओ, ये करो, ये माइंडसेट है। इसमें बैलेंस कहां से आएगा? जब तक आपने साथ में दीन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, आपने अपनी बेटी को बेहतरीन औरत की, बेहतरीन बेटी की, बेहतरीन बीवी की, और बेहतरीन माँ की मिसाल बनकर नहीं दिखाई, अगली जनरेशन इज गोइंग जस्ट लाइक अ गार्बेज। आज के बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं, इसी शहर की बात कर रही हूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ओपनली कहते हैं माओ से, आई एम नॉट अ मुस्लिम, हाँ आई एम एग्नोस्टिक, आई डोंट नीड एनी रिलीजन, आई एम फाइन वट एवर आई हैव इन माई माइंड। मैं इसी शहर की बात कर रही हूं, मैं बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं कर रही। अब भी हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और बस कपड़े और फर्नीचर और डेकोरेशन और इंटीरियर और बस इसी पर मसरूफ रहेंगे? प्लीज आपकी फ्लैश खुली हुई जो मेरी आंखों में सीधी आ रही है। तो अल्लाह ताला ने ये हकीकत जो इतने अरसे पहले इस किताब में दी थी, आज हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी रिसर्च मौजूद है। आप में से जो चाहे आप रमजान के बाद इस पर भी कीजिएगा जरा रिसर्च अपनी जाकर, चाइना प्रोडक्शन कल्चर्ड पर्ल्स, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी मार्केट है। फरमाया यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, जस्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल थिंग, जिनको जिन लोगों को लिंग्विस्टिकली कुरान की समझ ज्यादा आती है। आपको मालूम है कुरान की एक से ज्यादा किरात है, ये बात तो सबको मालूम है ना। और जब कुरान की एक से ज्यादा किरात है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी किरात में उसकी मीनिंग अलग और किसी में अलग, नहीं, मीनिंग्स अलग नहीं होते, सिर्फ वो उसके लफ्ज की डेप्थ को और समझने के लिए कहीं आपको एक फेल जो है वो एक पैसिव फॉर्म में मिलता है, कहीं एक्टिव फॉर्म में मिलता है, ये आपको हल्के हल्के स्लाइट डिफरेंस मिलते हैं। इसी तरह से ये जो आयत है सूरह रहमान की, इस आयत में जो पहला लफ्ज है जिस किरात को हम फॉलो करते हैं वो हफसन आसिम की है, उसके अंदर ये है या खुरुजू, एक किरात में ये आता है यू खरजू, पैसिव फॉर्म में आता है, निकाले जाते हैं इन दोनों से पर्ल्स और कॉरल्स, और निकाले जाते हैं मैं, आज बहुत से मुफस्सरीन इसके ऊपर जो है वो और तफसील से बात कर सकते हैं कि यानी एक तो वो है जो अल्लाह ने समुन्दर में फ्रेशली डाल दिए और इंसान उसको निकालता है समुन्दर की गहराइयों से, और एक निकाले जाने में इसके मजहूल बनने में फैक्टर ये भी आता है कि इंसान अब इसकी फ्रेश फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये कुरान की खूबसूरती है, जितना आप इसकी गहराई में जाते हैं ये अपनी खूबसूरती को खोलता जाता है। अल्लाह ने कहा या खुरुजू मिन हुमल लुलु वल मरजान, इससे कॉरल्स और पर्ल्स निकलते हैं। ये कॉरल्स और पर्ल्स होते कहाँ हैं? चाहे फ्रेश वाटर हो या ये डीप वाटर हो, डीप वाटर सीज हो, सॉल्ट वाटर हो, कहाँ होते हैं समुन्दर में? बिल्कुल गहराई में होते हैं, डीप सी डाइविंग आपको बिल्कुल डेप्थ में जाकर पकड़ने होते हैं। ऐसे नहीं होता कि ये उड़ रहे हैं ऊपर मछलियों की तरह फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल डेप्थ में होते हैं। जबकि आप इससे ऊपर की पूरी दुनिया समुन्दर की अगर देखें तो जो डेप्थ है वो और जो सरफेस है इसके दरमियान में हजारों लाखों समुन्दर की स्पीशीज होती हैं। बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब दो समुन्दरों का जिक्र किया तो पहले सरफेस का जिक्र किया कि इनका सॉल्ट वाटर और इनका फ्रेश वाटर आपस में मिलता नहीं है सेलिनिटी के डिफरेंस की वजह से, और फिर अल्लाह ताला ने दरमियान की क्रिएशंस को ओमिट कर दिया, जैसे जो उसमें दरमियान में मछलियां हैं या उसमें और मुख्तलिफ आबी जानवर हैं, अल्लाह ने उनको ओमिट कर दिया, फिर अल्लाह ताला समुन्दर की डेप्थ में चले गए। क्यों? इसकी वजह वो बताते हैं कि समुन्दर की डेप्थ में जाकर, हालांकि ये जो पर्ल्स हैं ये मेजोरिटी इंसानों को नहीं मिलते हैं, महंगी चीज है ना, एक्सपेंसिव चीज है, जीनत की चीज है, जबकि आप इसके ऊपर ऊपर पानी में देखें जो मछली और आबी जानवर है उसको तो बहुत से इंसान इस्तेमाल करते हैं, मछली तो हमारी खुराक भी है, और मछली किस क्वांटिटी में निकलती है हम सब समझते हैं। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहां पर मछली का जिक्र नहीं किया, उस चीज का जिक्र किया जो लीस्ट यूज की है और जरूरत की नहीं है। पर्ल जरूरत की चीज नहीं है, ये तो आपकी लग्जरी में आएगा, ये जीनत में आएगा, ये आराइश में आएगा। अल्लाह ने इसका क्यों जिक्र किया? कहते हैं इशारा इसमें यह है कि जब तुम्हारी वो चीज जो जरूरत की नहीं है वो तुमको खुश करती है, तो जो तुम्हारी जरूरत की चीज होगी यानी कि जो मछलियां और जो आबी जानवर हैं, जब तुम उनसे फायदा उठाओगे तो वो तुमको कितना खुश करेंगे। अल्लाह की कुदरत हर चीज में मौजूद है, तो अल्लाह का दिया हुआ पानी हो उसमें भी बरकत है, उसमें भी इंसान के फायदे हैं, पानी की गहराई में जाकर पर्ल्स की बात हो उसमें भी फायदे हैं, और पर्ल से ऊपर और पानी के सरफेस से नीचे अल्लाह ने जो जानवर रखे हैं इंसान की खुराक के तौर पर, जो मछलियां रखी हैं उनकी खूबसूरती और उनके फायदों की बात हो, तो वो भी अल्लाह की तरफ से मोजज़े हैं। आप देखें मछलियों में खूबसूरती कम है, आप एडमायर करते रहें और आप देखते रहें कि आपको एक से एक स्पीशी उसके अंदर नजर आती है। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने बहुत खूबसूरत कंपैरिजन किया है इन्हीं आयात का, ये जो यहाँ पर दो तीन आयात समुन्दर से रिलेटेड आई हैं, और मुसलमानों की बहुत सी नेमतों का।